समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में। ये वो मंच है जहां हम हर रोज आपसे जुड़ते हैं और आप तक पहुंचाते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। कार्यक्रम के इस अंक में भी हम आपको लेकर चलेंगे देश दुनिया की परिक्रमा पर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों से आपको रूबरू कराएंगे, जाएंगे देश के कोने कोने में और लेंगे वहां की भी हलचल। आज के अंक में आपके साथ हूं मैं सर फिरोजी और मेरे साथ हैं सायरा। नमस्कार सायरा।
नमस्कार सर फिरोजी, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स हू हैव जॉइंड अस इन दिस संडे एडिशन ऑफ परिक्रमा। सर फिरोजी हैज ऑलरेडी आउटलाइंड व्हाट टू लुक फॉरवर्ड टू इन टुडेज़ शो, सो आई वोंट वेस्ट मच टाइम एंड लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस।
जी बिल्कुल।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 11,200 करोड़ रुपीज इन महाराष्ट्र।
प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा मेक इन इंडिया से भारत विनिर्माण का केंद्र बना। उन्होंने लोगों से स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण और पौधारोपण अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया।
प्राइम मिनिस्टर लॉड्स एफर्ट्स ऑफ आकाशवाणी, दूरदर्शन एंड प्रसार भारती स्टाफ ऑन कम्प्लीशन ऑफ 10 ईयर्स ऑफ मन की बात प्रोग्राम।
जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा।
जननायक जनता पार्टी एंड आजाद समाज पार्टी अलायंस रिलीजेज मैनिफेस्टो फॉर हरियाणा असेंबली पोल्स प्रॉमिसिंग एमएसपी फॉर एवरी क्रॉप।
नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से 125 लोगों की मौत।
एंड यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू फ्लैग्स ऑफ अ मैराथन इन दिल्ली टू मार्क वर्ल्ड हार्ट डे। And Sir Firozi, today we know that it was Mann Ki Baat 114th edition of
it. 114th kadi thi.
Yes, and uske alawa episode to tha hi ek bahut hi lajawab, but it was more even more special because Mann Ki Baat completed 10 years and of
course we all know 3 October ko ho jayenge 10 saal.
And Prime Minister Modi lauded the efforts of Prasar Bharati, Akashvani and Doordarshan. Yes, and speaking during his monthly broadcast, he said that India has become a manufacturing powerhouse due to the Make in India initiative. He said the poor, the middle class and MSMEs are getting a lot of benefit from this campaign and it has provided an opportunity to people of every class to showcase their talent. Mr. Modi also urged the people to buy Made in India products during the coming festive season.
आज भारत मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बना है। हर सेक्टर में देश का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। देश में एफडीआई का लगातार बढ़ना भी हमारे मेक इन इंडिया की सफलता की गाथा कह रहा है। त्योहारों के इस मौसम में आप फिर से अपना पुराना संकल्प भी जरूर दोहराइए, कुछ भी खरीदेंगे वो मेड इन इंडिया ही होना चाहिए। आपको अपने क्षेत्र में बने स्थानीय उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए।
और सायरा, जैसा कि हम जानते हैं कि आने वाले 3 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम को 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे, जिस पर बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये कड़ी उनके लिए विशेष रूप से भावुक करने वाली है। वहीं प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती से जुड़े लोगों की सराहना करते हुए कहा कि उनके अथक प्रयासों से ही ये कार्यक्रम इस महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंच सका है।
मन की बात की 10 वर्ष की यात्रा ने एक ऐसी माला तैयार की है जिसमें हर एपिसोड के साथ नई गाथाएं, नए कीर्तिमान, नए व्यक्तित्व जुड़ जाते हैं। मैं आज दूरदर्शन, प्रसार भारती और ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े सभी लोगों की भी सराहना करूंगा। उनके अथक प्रयासों से मन की बात इस महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंचा है।
प्रधानमंत्री ने अपना भाषण खत्म करते हुए लोगों को आने वाले त्योहारों के लिए शुभकामनाएं भी दी। और सायरा, अब डेडलाइन इंडिया में क्या बात करने वाले हैं हम?
वेल, वी ऑल नो दैट टुडे इज वर्ल्ड हार्ट डे, सो आज डेडलाइन का मुद्दा भी वही रहेगा। एंड यस लिसनर्स, वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड हार्ट डे टुडे, व्हिच इज अ क्रूशियल रिमाइंडर टू टेक केयर ऑफ योर मोस्ट वाइटल ऑर्गन द हार्ट। Let's dive into why this day matters and how you can take action for a healthier heart. World Heart Day is observed every year on 29th of September to raise awareness about cardiovascular diseases, which are the leading cause of death globally. According to World Heart Federation, over 20.5 million people die each year from heart-related conditions, which is a very staggering number. But the good news is that many heart diseases can be prevented through lifestyle changes.
जी सायरा, आपने बिल्कुल सही कहा कि लाइफस्टाइल चेंजेस करके हम इन बीमारियों से बच सकते हैं, इन्हें अवॉइड कर सकते हैं. पर उन चेंजेस को, उन बदलाव को लाने के लिए जरूरी है ये समझना कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे दिल के लिए खतरा हैं. हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और खराब लाइफस्टाइल के कारण दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. पर जैसा कि सायरा ने कहा कि अच्छी खबर यह है कि अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव कर हम अपने दिल को सुरक्षित रख सकते हैं. और आप शुरुआत कहां से कर सकते हैं? सबसे पहले तो जरूरी है कि हम बैलेंस्ड डाइट लें जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद हों और फैट जैसे न्यूट्रिएंट की मात्रा डेली लिमिट से ज्यादा ना हो. फिर आप अपने रोजाना की जिंदगी से कुछ वक्त अपनी हेल्थ के लिए निकालें और डेली एक्सरसाइज करें. इसके अलावा आपके पास महीने या 15 दिन में जब भी वक्त हो तब किसी मेडिकल फैसिलिटी में जाकर हेल्थ चेकअप जरूर कराएं. और सर, अब तो सरकार भी कई जगहों पर हेल्थ कैंप जैसी चीजें ऑर्गेनाइज करती है ताकि अगर कोई बीमारी हमारे शरीर को घेर भी रही है तो बिल्कुल शुरुआत से ही उसका पता चल जाए. और अब बात करें लाइफस्टाइल चेंजेस की, तो कोशिश करिए कि आपकी डाइट में सॉल्ट इनटेक कम हो, क्योंकि नमक की अधिक मात्रा हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ा सकती है. वहीं अल्कोहल और स्मोकिंग भी आपको अवॉइड करनी चाहिए. ऐसी बीमारियों का खतरा बहुत हद तक कम किया जा सकता है.
यस, इनफैक्ट यू मेंशन्ड सॉल्ट, सो थ्रू दिस शो आई वुड अर्ज आवर लिसनर्स टू स्विच टू रॉक सॉल्ट, जो हमारे पहले एंसेस्टर्स लेते थे, जेंधा नमक जैसे कहते हैं. तो आप अपने रोजमर्रा की लाइफस्टाइल में भी खाने में वो जो आयोडाइज नमक है उसको रिप्लेस करके स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट वी कैन डू. फॉर एग्जाम्पल, यू एंड आई वी आर इन द मीडिया, तो अगर आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं बट बिकॉज वी कम इन शिफ्ट तो आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, विच अगेन पुट्स अ लॉट ऑफ टोल ऑन योर हार्ट. सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी पीपल लाइक अस हू हैव erratic lifestyles and erratic routines, rather they should be extra cautious about other things, about like our diet and about our exercise.
Ji bilkul.
And from 2024 to 2026, the Heart Health Campaign will center around the theme Use Heart for Action, which urges individuals to prioritize their heart health while encouraging them to demand that leaders take cardiovascular health seriously. In fact, have you noticed that a lot of young people are dying of heart attack?
करने वाली थी बिल्कुल कि आजकल युवा जो है, जो यंगस्टर है, उन पर इस बीमारी का खतरा ज्यादा बढ़ गया है.
Yes, absolutely. And in fact, I was watching an interview of a cardiologist. He said that it's very important, especially young people.
जी.
Most of us are mostly on social media and not able to express our emotions personally through वन टू वन इंटरेक्शन. लेकिन कहते हैं इंसान तो सोशल एनिमल है, तो जरूरी है कि कोई कुछ हम कहें, कुछ तुम कहो, कुछ हम सुने, कुछ तुम सुनो, और अपने डिवाइसेस से ग्लूड ना रहो. बिकॉज दैट कार्डियोलॉजिस्ट सेड दैट अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ्स अमंग यंगस्टर्स इज बिकॉज दे आर टेकिंग सो मच स्ट्रेस इमोशनली, वेदर बी इट करियर्स, बी इट देयर रिलेशनशिप.
बातों को दिल में ही रख लेते हैं.
यस, और दिल पे रखने के अलावा दिल पे शायद सवार कर लेते हैं चीजों को, एंड which is becoming very, very, you can say, fatal for them.
और कई बार हम अपनी हेल्थ को नजरअंदाज कर देते हैं. कई लोगों को इन गंभीर बीमारियों का तब पता चलता है जब उन्हें अचानक चेस्ट में पेन होने लगता है या अचानक हार्ट तक ब्लड फ्लो के ब्लॉक हो जाने से उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है, या कई बार कार्डियक अरेस्ट के कारण उनका दिल काम करना बंद कर देता है. और शायद हम आसपास का, चाहे वो मीडिया हो या आसपास के लोग हो, उन्हें देखकर हमने ये मान लिया कि जो हार्ट अटैक का लक्षण है वो सिर्फ इतना है कि किसी को चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है. हालांकि पुरुषों और महिलाओं में इसके लक्षण अलग अलग हो सकते हैं.
यस, एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स ऑल्सो. इफ समबडी इज डायबिटिक तो जरूरी नहीं उसको एज सच, जैसे लेमैन्स लैंग्वेज में जैसे हार्ट अटैक है तो उसमें दर्द नहीं उठता. तो समटाइम्स कंजेस्टिव यू कैन से हार्ट फेलियर भी होता है, इन विच द हार्ट स्लोली वीकन्स एंड इट डाइज. सो इट डजंट पेन एनीवेयर बट द हार्ट स्टॉप्स फंक्शनिंग इवेंचुअली. दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट इवन दो एक्सरसाइज इज वेरी गुड बट हर चीज की एक्सेस भी गलत है.
किसी भी चीज की अच्छी नहीं है.
सो अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स हु जस्ट गो एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द जिम दैट ऑल्सो टेक्स अ टोल ऑन देयर हार्ट हेल्थ एंड एकदम से फिर पता चला कि यू नो
उनकी मौत हो गई है और बाद में पता चलता है कि हार्ट अटैक उसका या कार्डियक अरेस्ट उसका रीजन रहा.
एंड वो कार्डियक अरेस्ट क्यों था? बिकॉज दे वर ओवर एक्सरसाइजिंग. सो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड. एंड वेल एज पार्ट ऑफ आर वर्ल्ड हार्ट डे थीम दैट इज यूज हार्ट फॉर एक्शन इट्स टाइम टू एनकरेज एवरी वन टू टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स. And I think the first step which is to just to know your body. So, जिस तरह से कह सकते हैं कि पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, नॉट एवरी शू कैन फिट एवरी वन. तो जो यू कैन सी जो ब्लैंकेट रूल्स हैं, एक्सरसाइज, डाइट, ये आंख बंद करके ना फॉलो करें.
बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है.
सो इट्स फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट टू नो योर ओन बॉडी एंड सी व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर बॉडी. एंड ऑफकोर्स यू कैन सी द जनरल रूल्स आर ऑफकोर्स हैविंग अ हेल्दी डायट, गेटिंग एक्टिव, बींग एट अ हेल्दी वेट विच मोस्ट ऑफ अ स्ट्रगल. इन fact, you and I also we were discussing about this, and quit smoking or at least smoke less, because as it is, we are living in such polluted cities. Even if you don't smoke, you are actually smoking a lot.
So, jitna ho sake avoid karein alcohol or smoking.
And control your cholesterol levels, your blood glucose levels, and also your blood pressure. Drink alcohol only in moderation if you cannot completely cut it out. And manage stress, which is very important, but you should know how to manage your stress. And get enough sleep. I know it's very difficult these days. Jinki hum log ki tarah erratic duties hain, unko to kabhi neend puri nahi
hoti. Aur khaas taur par jo lifestyle hamara ho gaya hai raat tak jagne ka.
And these mobile phones, everyone is on their smartphone till 2 o'clock, 1 o'clock at night. But nonetheless, hum log agar apni sehat bachana chahte hain, so we have to at least take a step. And in fact, one thing that is probably which I would like to share with our listeners. Take a detox from social media.
ये बहुत जरूरी हो गया है आज के दौर में.
Because I have seen Sir Firozi, these days people the WhatsApp university is rife with rumors and everything, and people forward it, and there are arguments on on social media platforms about small things that get flared up, and then people take so much stress on that. So it's very important to just cut off all social media, and जो basic चीज है, make sure that you rule the devices and the devices don't rule you.
आमतौर पर हम आजकल क्या करते हैं, जब खाना भी खा रहे होते हैं तो उस वक्त भी हम लोग फोन पर लगे होते हैं, जबकि researchers का ऐसा कहना है कि अगर आप फोन यूज करते हुए, किसी डिवाइस को यूज करते हुए खाना खा रहे हैं तो बहुत चांसेस है कि आप ओवर ईटिंग कर लें, तो वो भी आपकी हेल्थ पर एक नेगेटिव इफेक्ट देगा.
दैट्स ट्रू. सो यस, आई थिंक बैक टू द इफ यू आर मोर कनेक्टेड टू नेचर, दैट इज द बेस्ट थिंग. सो वेल, टेक केयर ऑफ योर हार्ट लिसनर्स, बिकॉज जान है तो जहान है.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास हमारे लिए आज क्या खास जानकारी है.
एंड यस, इट्स दैट टाइम यू कैन से ड्यूरिंग द शो व्हेन वी बी ट्रू टू द स्पिरिट ऑफ परिक्रमा. हम लोग देश के मुख्तलिफ हिस्सों में जाते हैं,
परिक्रमा करते हैं
एंड सी व्हाट इंटरेस्टिंग स्टोरीज आवर कॉरेस्पोंडेंट्स हैव. सो इन दिस जर्नी टूडे वी आर हेडिंग फर्स्ट टूवर्ड्स द साउथ. एन एम्प्लॉई ऑफ सिंगारेणी कोलरीज इन तेलंगाना, के एन राजशेखर, thanked Prime Minister Narendra Modi for mentioning his efforts in his renowned Mann Ki Baat program today. With his passion about nature, Rajshekhar wanted to spread greenery and thereby safeguard the surroundings around him. He took up the mission, plant a sapling a day, and completed over 1500 days, thereby planting 1500 plants. That's quite a feat. More from our correspondent.
Rajshekhar as a child has drawn inspiration from his father and took up green mission when he grew up. He started to strive for environmental protection since many years after securing employment as fitter in the Singareni coal collieries in Bhadradri Kottagudem district in Telangana. Taking up plantation of saplings in July 2020 as part of his mission Prakruti Harita Diksha, Rajshekhar wanted to spread the message of greenery. He reached the milestone of 1500 plants during August this year. In addition, he helped to plant saplings in Singareni collieries and many others. Thanking Prime Minister Narendra Modi for mentioning his green efforts in today's Mann Ki Baat, Rajshekhar appealed to everyone to allot time for social work and work for nature after taking care of their family and job responsibilities. He also stressed on allotting time for cleanliness and green activities. With Hari Krishna, Lakshmi, Akashwani News, Hyderabad.
उत्तर बंगाल का गोरखाल्यान क्षेत्रीय प्रशासन जीटीए इलाके में 5 दिनों से जारी लगातार भारी वर्षा के बीच स्वच्छता अभियान जारी है। दार्जिलिंग पहाड़ समतल व तराई इलाकों में हो रही लगातार वर्षा के कारण आम जनजीवन प्रभावित है। कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है और कई स्थानों पर सड़कें अवरुद्ध हैं। एक रिपोर्ट।
सिलीगुड़ी सिक्किम को जोड़ने वाला एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 कई स्थानों पर चट्टान धंसने के कारण अवरुद्ध है। समतल इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। इन सभी विपरीत परिस्थितियों में भी विगत 17 सितंबर से आरंभ हुआ राष्ट्रव्यापी स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा जीटीए क्षेत्र में आकाशवाणी क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा सुचारू ढंग से चलाया जा रहा है। 27 सितंबर को दार्जिलिंग पहाड़ का नामी शैक्षिक संस्थान संत जोसेफ्स कॉलेज में कॉलेज के विद्यार्थियों के बीच स्वच्छता ही सेवा, स्वभाव स्वच्छता व संस्कार स्वच्छता विषय पर जागरूकता कार्यक्रम संपन्न किया गया। इसी प्रकार आज 29 सितंबर को दार्जिलिंग व कर्सियंग के कुछ प्रसिद्ध कवियों को लेकर स्वच्छता ही सेवा विषय पर कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। आज अपराह्न कर्सियंग में ही सफाई कर्मियों के साथ सफाई मित्र शिविर का आयोजन किया गया है। पहाड़ का विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मिरिक में आगामी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन सुबह स्वच्छता जागरूकता दौड़ तथा दोपहर में भूतपूर्व सैनिक संगठन साहित्य सुनौ संस्थान नेपाली संस्कृति परिषद तथा अन्य कई गैर सरकारी संघ संस्थाओं के सहयोग से एक व्यापक स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में दार्जिलिंग का विश्व प्रसिद्ध चौरस्ता व महाकाल मंदिर परिसर में स्थानीय संघ संस्थाओं के सहयोग से स्वच्छता अभियान का व वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाएगा। इस उपरांत कर्सियंग के प्रमुख पर्यटन स्थल ईगल्स क्रेक में सफाई अभियान चलाया गया। दार्जिलिंग के चाय बगान से लेकर गांवों तक तथा शहरों में स्वच्छता प्रति व्यापक स्तर पर जनचेतना जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें उल्लेखनीय भागीदारी दिखाई दे रही है। 365 दिन स्वच्छता, प्रत्येक व्यक्ति वर्ष में 100 घंटे सप्ताह में 2 घंटा स्वच्छता के लिए समर्पित करे, यह आह्वान यहां के प्रबुद्ध जन कर रहे हैं। यहां की प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशल मीडिया भी इसके प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय योगदान दे रही है। परिक्रमा के लिए अशोक चौरसिया, आकाशवाणी कर्सियंग।
The Tar village in Ladakh is recognized as one of the best tourism villages of 2024 in responsible tourism category by the Ministry of Tourism, Government of India. In fact, Sir Firozi, ek bada interesting qissa hai. Meri kuch friends jo hai Ladakh jab gaye the, to you have seen that, you know, aajkal hum log yahan still, we, although the government is trying its best, but ek wo civic sense, ek basic cheez hoti hai ki agar aapne kuch khaya, then don't litter on the road.
Khara aadat hum logon mein hai.
So a friend said that over there, maybe one of her uncles was also traveling, so he just probably was eating a, you know, a chip and nonchalantly, you know, where without even realizing he just threw it. So wahan ke local aaye, unhone kuch bola nahi, unhone bas unke samne khamoshi se us packet ko liya aur dur kahin 100 meter ki duri pe dustbin agar tha wo wahan tak gaye. And then he threw it over there. And then she said, we were so ashamed. So these are the small things that only people will probably, if they take initiative, then it won't happen. So we have more details on this village, which is the best tourism village, from Muzaffarwani.
Tar village in Leh Ladakh was honored as one of the best tourism villages of India 2024 in the responsible tourism category by the Ministry of Tourism, Government of India. This prestigious recognition was announced on World Tourism Day. The award ceremony took place at Vigyan Bhavan, New Delhi, and was attended by distinguished dignitaries including the Vice President of India, Jagdeep Dhankar, Union Minister of Tourism and Culture, Gajendra Singh Shekhawat, and Minister of State for Tourism, Suresh Gopi. This recognition not only celebrates the hard work and dedications of the residents of Tar village, but also positions it as a model for responsible tourism in the region. It also highlights the responsibility to contribute to the reversal of biodiversity loss and protect nature for future generations by promoting a regenerative approach to tourism. Ladakh Autonomous Hill Development Council Leh has extended unwavering support in making Tar village a responsible and economically friendly destination for tourists, and their initiatives have fostered an environment where local culture and traditions can thrive alongside tourism. LHDC late chairman Tashi Gelson extended heartfelt congratulations to the people of Tar village for being recognized as one of the best tourism villages of India 2024 in the responsible tourism category. He also lauded the commitments of the villagers to promoting sustainable tourism practices that benefit both the environment and the local community. For Parikarma, this is Chetan Tashi from Leh Ladakh.
And in today's defense news capsule from the Directorate of Public Relations, Ministry of Defense, let's listen to the excerpt of the interview of Director General of Quality Assurance, N. Manoharan. The interview has been taken by Broadcasting Officer Anand Saurabh.
Directorate General of Quality Assurance, also known as DGQA, under the aegis of Department of Defense Production, Ministry of Defense, celebrated its 68th Raising Day, also known as DGQA Day, on 27th of this month. The organization provides quality assurance cover for the entire range of arms, ammunitions, equipment and the store supply to the armed forces. On this occasion of DGQA Day, we spoke with Director General N. Manoharan on the roles, responsibilities and the various initiatives undertaken by DGQA in recent past. Here are the excerpts.
My sincere greetings to you and your organization on the raising day of DGQA.
Thank you very much.
To start with, in this changing time with larger participation of private firms, advancements in science and technology and renewed focus on sustenance and quality, can you please broadly spell out role and responsibilities of DGQA organization?
DGQA organization is a quality assurance organization for the armed forces and the paramilitary forces and the state police forces. So whatever the products which they procure from the defense sector, so the DGQA is providing the quality assurance cover. So as a organization, we not only give a quality assurance cover, we also ensure the reliability of the items through various trials and testing during the induction process of the arms and ammunition.
And so the restructuring of DGQA has been in news. If you can elaborate on that.
The organization undergone restructuring basically to do the ease of doing the business by reducing the timelines of the quality assurance processes and also that make an interaction with the various industries and the DPSUs more easy, for which various measures have been already taken. So we have brought a concept of a single point AHSP and single point directorate concept in which an entity with different technologies integrated can be dealt at one point and a single window system by which the manufacturers and users can interact at one point so that the timelines and the interaction methodology is eased out. So in addition to that, we have also have a lot of reforms on the documentation systems and the method of quality assurance which we do. So in which we have introduced various new schemes by undertaking a certification from the manufacturer itself. If it is a proper accredited certification, with that we accept it and we don't get into those tests. And also various other methods like various tests which are conducted by the manufacturer themselves. During that time we go and associate instead of we doing separately, by which timelines also reduced. With which a lot of industry have benefited out of that, and government schemes have been also been introduced like the self-certification and green channels schemes. These provisions can be undertaken by the manufacturer in which they will be able to directly supply the items to the users instead of coming through the QA agencies. So this also enabled them to make an easy access to the system and faster supply of items to the armed forces.
And so as we are living in the digital era, what are the various steps you have taken for the automation and digitization of your responsibilities?
Yes, so from the automation and digitization point of view, the first aspect which is whenever any supply orders are placed on the manufacturers, these needs to be actively monitored so that there is no delay takes place and they are properly prioritized so that the quality assurance covers are given on right time, for which we have created a supply order monitoring portal digitally, and this portal monitors entire supply orders which are being placed on the private industries and DPSUs. So, and this is monitored at the highest level so that any delays which are getting reflected in the portal and getting highlighted, which will be immediately attention comes to the highest level so that they take the corrective action. So the delays are reduced by the managing the QA system itself. So that way the digitization has been done. In addition, as I already brought out, the digitization of a portal of all the test facilities have been done, so that aids the production agency to easily approach the and get their test done. So this also has been done, and various documentations have been brought in so that they are able to get the guidance very easily. So we have created a lot of joint service specification, joint service guides, which enables them to easily see how they should go about getting their testings done, what are the parameters available in the testing, so that it helps them in planning their work so easily, and we are able to do that also. Also has been done, and in addition to that, we are conducting periodical seminars with all the industries and FICCI, SIDM.
For Parikrama, this is Anand Saurav, the Directorate of Public Relations, Ministry of Defense.
और श्रोताओं, अब आपको लेकर चल रहे हैं आजादी के सफर की ओर.
दिस डे इन 1942, मतंगिनी हजरा लेड हर लाइफ फॉर द नेशनल ऑनर ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट. शी वॉज शॉट डेड बाय द ब्रिटिश इंडियन पुलिस इन फ्रंट ऑफ द तामलू पुलिस स्टेशन, मेदनीपुर डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, ऑन सितंबर द 29th, 1942.
अफेक्शनेटली नोन एज गांधी बूरी, मीनिंग Old Lady Gandhi in Bengali. Matangini Hazra was born in the small village of Hogla near Tamluk in 1869. She was married early and widowed at 18 without bearing any offspring.
Influenced by the Gandhian philosophy, she became actively interested in the Indian independence movement. She took part in the civil disobedience movement and was arrested for breaking the Salt Act. She was incarcerated for 6 months at Behrampur Jail.
As part of the Quit India movement, Matangini Hazra, who was 73 years old at the time, led a procession of 6,000 supporters with the purpose of taking over the Tamluk police station. This was to be a step in overthrowing the British government in the district and establishing an independent Indian state.
When the procession reached the outskirts of the town, they were ordered to stop by the police. As Matangini stepped forward, she was shot by the police. One after another, 3 gunshots were fired at the 73-year-old Matangini Hazra.
With each gunshot, her voice chanting "Bande Mataram" got louder, and the tricolor that she held.
और श्रोताओं, अब समय है उन व्यक्तित्व को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि है या जन्मदिवस है. शुरुआत कर रहे हैं टॉम अल्टर से, जिनकी आज पुण्यतिथि है. ये भारतीय सिनेमा के अभिनेता थे. इन्होंने करीब 300 फिल्मों में अभिनय किया. 2008 में भारत सरकार द्वारा टॉम अल्टर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया. इनकी गिनती थिएटर के दिग्गजों में होती थी और ये अपने नाटकों में अक्सर शायरी का प्रयोग करते थे. आइए सुनते हैं एक शायरी उनकी आवाज में.
अंदाज़े जुनून कौन सा हम में नहीं मजनू, पर तेरी तरह इश्क को रुसवा नहीं करते.
Today we are also remembering Sashadhar Mukherjee, who doesn't need any introduction, a very towering figure in Hindi cinema, who started his career with Bombay Talkies in the 1930s and later established a Filmistan studio with Rai Bahadur Chunnilal. And we all know that later he went on to start his independent studio, Filmale. He is noted for films like Dil Dekhe Dekho, Love in Shimla, Ek Musafir, Ek Haseena and Leader. Let's listen to a song from one of his films.
दिल देख देखो, दिल देख देखो, दिल देख देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी. पूछो 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 परवाने से जरा, धीरे धीरे जलने में.
आज भारतीय अभिनेता महमूद की भी जयंती है. इनका पूरा नाम महमूद अली था. 3 दशक लंबे चले अपने करियर में इन्होंने 300 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया. प्यार किए जा और पड़ोसन महमूद की दो सबसे ज्यादा यादगार भूमिकाओं वाली फिल्में हैं. आइए सुनते हैं उन पर फिल्माया ये गीत.
हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं.
And well, today is also Isha Sharwani's birthday, and we all know her lovely performance in the film Kisna. Let's quickly listen to this beautiful song.
Hum mile na mile, hum rahe na rahe.
रहेगी सदा यहाँ प्यार की ये दास्तां।
श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इजाजत दीजिए सर फिरोजी और सायरा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।